अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे तुम लोग? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? हाय हाय, अरे मैं यहां फंस गया हूं। अरे खुसरो, खुसरो कहां जा रहे हो? महताज, सीमा, शर्मा, अरे भाई मैं यहां फंस गया हूं, कहां जा रहे हो? सादिक, याद तो पहुंचा। अरे मैं सो तो नहीं रहा कहीं? मैं जरूर ख्वाब देख रहा हूं। अगर मैं नींद में हूं तो फिर उठ क्यों नहीं पा रहा? अरे मेरे खुदा, अरे मेरे खुदा, मेरी फरियाद तो पहुंचो।
अरे मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हैं? अजान होने वाली है, सहरी खाए ना।
सहरी?
सहरी के लिए उठिए ना। कैसा ख्वाब देखा है? उठे भाई, उठ जाइए, अजान होने वाली है, देर हो जाएगी, अब उठिए। बताया नहीं कि कैसा ख्वाब देखा है? सोचे जा रहे हैं।
बहुत अजीब ख्वाब था। ख्वाब देखा कि मेट्रो में फंस गया हूं और कोई मदद नहीं कर रहा। सब बाहर खड़े हैं, सीमा, खुसरो, महताज, सरमस्त, जितना भी उन्हें पुकारा टस से मस नहीं हुए और अपना रास्ता लेकर चल दिए।
देखा, 100 बार कहा था, मानते कहां हैं आप? ये सब उसी हंगामे का नतीजा है जो आपने नया शॉपिंग सेंटर खोलने के लिए मचाया था।
बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर मैंने कोई शॉपिंग सेंटर उनके नाम खुलवाना चाहा तो वो हंगामा हो गया।
यही तो बात है ना, अब आपकी बेटी, बेटा, दामाद, बहू, बच्चे सब के सब इंतजार कर रहे हैं कि बाबा किसको ज्यादा चाहते हैं। महताज और सीमा की तो वैसे ही नहीं पड़ती, किसी के नाम भी कुछ करेंगे ना दूसरा नाराज होगा। अगर अपने पोती पोतों के नाम भी कुछ किया तो बाकी लोगों को जरूर एहसास होगा। यही है आपके ख्वाब की ताबीर।
ठीक है, अब आधी रात को तुम्हें भी मौका मिला है कि अपने दिल की बातें ख्वाब की ताबीर बनाकर पेश करो।
मेरा फर्ज कहना था, आप माने ना माने।
ख्वाब में बाबा और अम्मी को देखा था लेकिन कोशिश के बावजूद उनसे बात नहीं कर पाया।
ये तो माह मुबारक की शुरुआत है, वो भी खैरात की उम्मीद रखते होंगे। हक है उनका आप पर। कितनी बार आपसे कहा कि जाए एक बार उनकी कब्र में, अलबत्ता अभी भी देर नहीं हुई है।
सफा, वो भी माह मुबारक में, कैसी बात कर रही हो? अभी तो शॉपिंग सेंटर का इफ्तिताह करना है। तुम जानती हो मुझे कितना काम है।
आपको तो हर रोज काम रहता है, काम काम काम, सिर्फ काम। मैं कहती हूँ मुख्तसर सा वक्त लगेगा, फातिहा भी पढ़ लीजिएगा, सफर भी कर लीजिएगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा।
अभी इसका मौका नहीं है, इंशाल्लाह दूसरी फुर्सत में।
हमेशा यही कहते रहिए, अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता मौका न मिला तो फिर क्या होगा? देखिए, इंसान को तो अपने 1 घंटे के बाद की भी खबर नहीं।
चलें कम से कम जब तक तुमसे पीटा नहीं नमाज ही पढ़ लूं।
इंशाल्लाह आपका साया 120 साल तक मेरे सर पे रहे।
सिर्फ 120 साल, इससे ज्यादा नहीं?
क्योंकि उसके बाद मैं नहीं होंगी, आप होंगे।
खुदा ना करे। अल्लाह अकबर।
बच्चों को मैंने इफ्तार पे बुलाया है, आप भी देर ना कीजिएगा।
कुछ कम वम तो नहीं?
नहीं, सीमा ने कहा है सब कुछ खरीद लेगी, सिर्फ आप जलेबी लाना ना भूलिएगा।
हशमत को लेने भेज दूंगा, आज बहुत काम है। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
क्या हो गया है? ठीक ही नहीं हो रही है।
आखिर पता चला क्या खराबी है?
हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको देर हो रही है तो मेट्रो का स्टेशन यहीं करीब है, मेट्रो से फैक्ट्री चले जाए तो शायद बेहतर होगा। मैं भी एक मैकेनिक बुला के लाता हूँ, देखिए इसमें क्या खराबी हो गई है। आप जाइए।
अच्छा, तुम भी इसे जल्दी ठीक करो, शाम में बहुत काम है, जरा सादिक से भी मिलने जाना है।
मैं देखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।
इजाजत है मैं आपकी मदद करूं? अपना साँव उठाइए ऊपर, ठीक है, पाँव रखिए इधर। जी
क्या है, कोई काम था क्या? क्यों देख रहे हो?
जब तुम्हारी आंखें नहीं देख रही हैं तो नहीं, कोई काम नहीं था, बैठे रहो।
क्या बिगाड़ा है जो ऐसी बात कर रहे हो?
चले आप बैठ जाएं, आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज हो गए।
आप यहाँ बैठ जाएं। नहीं नहीं आप
बैठिए, हम यहाँ ठीक है।
अब बैठ।
बहुत बहुत शुक्रिया। हाय हाय,
कोई खास बात तो नहीं है? कोई बात
नहीं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
सलामुअलैकुम हाजी साहब।
वालेकुम सलाम रहमत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हाजी एक मुख्तसर सा काम था आपसे।
देखो अगर काम से निकाल देने के बाद है तो मुझसे नहीं सरमद से जाके बात करो।
सरमद साहब ने हुक्म दिया है कि मुझे अंदर नहीं आने दें। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुन लें।
ठीक है, अंदर आओ, देखें क्या बात है।
हाजी साहब मुझे नहीं मालूम आपसे क्या कहा गया है। खुदा की कसम मेरी कोई गलती नहीं।
बंदा खुदा, रोजे की हालत में अब झूठ की कसम क्यों खा रहे हो? दो हफ्ते तक तो काम पर नहीं आए, आने के बाद सरमद से लड़ने को तैयार हो गए, कहते हो गलती नहीं की।
आप मुझे बोलने का तो मौका दें।
ठीक है, ये कसम वसम आहो नाला छोड़ो, सीधे सीधे बताओ हुआ क्या था।
दो हफ्ते पहले मुझे खबर मिली कि मेरे वालिद बीमार हैं और फिर मैं गाँव चला गया था। जब वहाँ पहुँचा तो उनकी हालत बहुत सीरियस थी। उन हालात में मैं आपको खबर नहीं दे पाया और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और मैं लेट हो गया।
खुदा उनकी मगफरत करे, इंशाल्लाह खुदा तुम्हें सब्र दे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मजबूर होकर मुझे एक हफ्ता वहाँ रुकना पड़ा और वापस आने के बाद पता चला कि सरमद साहब ने मुझे निकाल दिया है।
तो लड़ाई झगड़े की जगह उनसे जाकर असल बात बता देते ना।
खुदा की कसम जो मैंने लड़ाई शुरू की हो उनसे ये बातें बताई थी, लेकिन कहने लगे मरना तो सबको है, इनको दफन करके एक मजलिस करना और फातिहा खानी करवा देते हैं, इतने ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सरमद साहब अगर अपनी इज्जत करना नहीं जानते हो तो कम से कम मुर्दों की इज्जत करो। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक तमाशा मेरे मुँह पर मारा और मैंने भी बस क्या बताऊँ, बस एक गलती हो गई मुझसे।
मुझे ये बातें पता नहीं थी, अगर उसने कोई गलती की तो तुमने और बुरा किया, कारीगरों के सामने उसे मारा। चलो वो मेरा दामाद नहीं, तुम्हारा बास तो है या नहीं, इस कंपनी में मैनेजर है या नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए था।
मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आप थोड़ा मुझे हक दें। हाजी मैं आपके लिए 5 साल से काम कर रहा हूँ, आप मेरी रोजी रोटी का सहारा मत छीने।
देखो सुनो सुनो, हर काम का एक तरीका होता है। अगर मैंने तुम्हें काम पर वापस ले लिया तो दरहकीकत सरमस की बेइज्जती की है, तो फिर दूसरे कारीगर उसकी बातें नहीं सुनेंगे। सबसे सही रास्ता यह है कि तुम खुद जाकर सरमस से बात करके राजी करो।
सरमस साहब ने मेरे अंदर आना मना कर दिया है।
वो मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे बात कर लूँगा, अगर उसके पास गए तो ज़्यादा सख्ती ना दिखाए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाने दो फिर आना।
हाँ जी, इसका मतलब ये
है कि है उससे बात करूँगा ना।
खुदा आपको तुल उम्र दे, आपका साया मेरे सर पर हमेशा रहे।
अब जाओ, मैं तुम्हें खुद बुलवाऊंगा, अब जाओ यहाँ से।
समझी, तुमको ऐसी उसकी धुलाई करना है कि उसके समझ में आ जाए कि नंद किसको कहते हैं।
हाँ भाई तुम तो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कम से कम जिससे बात कर रही थी उससे खुदा हाफिजी तो कर लेती।
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
क्या हुआ आज बहुत लेट आए?
क्या बताऊँ, गाड़ी ख़राब हो गई।
कितनी बार कहा ये गाड़ी बेचकर कोई नए मॉडल की गाड़ी ले लीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं।
मैंने इस गाड़ी के साथ ज़िंदगी गुजारी है और एक दूसरे के साथ वादा भी किया है कि हमेशा एक साथ रहेंगे।
वाह, तो फिर मुझे अपनी सास साहिबा से कहना पड़ेगा कि आप उनके लिए सौतन लाए हैं, अपने बारे में कुछ और सोचें वो।
अच्छा, क्या खबर?
ये नई चीज़ों की रसीद है और बाकी काम भी हो चुके हैं। नए शॉपिंग सेंटर से भी अभी होकर आया हूँ, सब कुछ ठीक है। बस आपको अपनी खूबसूरत तस्वीर से एक इस्तखारा देखना होगा कि मैं भी तारीख, दिन और मौका तय कर सकूँ इफ्तिताह के लिए, या आज वालों की ज़बान में ओपनिंग के लिए।
ये रहमत का किस्सा क्या है?
रहमत का किस्सा तो ख़त्म हो गया था,
लेकिन वो आया था और कुछ और बातें कह रहा था।
वो आपके पास आया था, उसने गलत किया था, तमाम कारगर गवाह हैं।
कह रहा था उसके बाप का इंतकाल हो गया था और उसे अपनी गलती का एहसास भी है। मुझसे ख्वाहिश की है कि मैं वास्ता बनकर कुछ करूं।
हाजी, आप रहम दिल इंसान हैं, आपसे नहीं होगा, मुझे अपने तरीके से काम करना।
मैंने भी कहा है कि तुम कंपनी के मैनेजर हो, तुमसे बात करना पड़ेगा।
देखिए हाजी, मैं आपकी बात नहीं टालता, लेकिन इसी तरह होता रहा तो कारीगरों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी।
इत्तेफाक से तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी, सब ने देखा है कि तुमने भी उसे मारा था, अगर माफ करोगे तो ज्यादा इज्जत मिलेगी।
असल में हाजी
साहब, अजीज़-ए-मन परेशान है, उसके बीवी बच्चों का क्या कसूर है?
ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आपकी बात ठुकराता कहूँ। मेरे तो इस दुनिया में बस एक ही स्मार्ट से सुसर है।
ज्यादा स्मार्ट मत बनो, कहाँ दस्तखत करना है?
ये और ये नई रसीदें हैं, और वो तो पिछले हफ्ते की खरीद की लिस्ट है। इन दो जगहों पर सिर्फ दस्तखत कर दें तो बस मैं चलूं।
इजाजत है?
वाह भाई वाह, मेहताज साहिबा, इधर कैसे आना हुआ?
सलाम अलैकुम सरमद साहब, क्या हाल है? सीमा पोपी कैसी हैं?
अलैकुम सलाम मेहताज साहिबा। वाह भाई, शुक्र है आपकी ज्यारत तो ही। इस वक्त नए शॉपिंग सेंटर के बारे में सवाल करने आई होंगी ना?
नहीं दादा जान, असल में एक बात कहने आए थे, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो।
कैसी बात करनी है बेटा, अंदर आओ।
अगर इजाज़त दें तो मैं भी चलूँ, पोती और दादा की बातों के दरमियान हायल नहीं रहूँगा मैं। मुझे क्या समझती हो, क्या मैं यकीन कर लूँ तुम्हारी इस बात का, मुझे पागल समझा है?
अच्छा तो बताइए कि क्या बात है जो हमारी बेटी महताब अपना काली छोड़कर मेरे पास आने पर मजबूर हुई? अलबत्ता मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, आफाक ने सबको इफ्तार पर बुलाया है, लेकिन महताज और तुम्हारे बाबा के दरमियान बदमजगी है। अगर सामान और सीमा वहाँ रहे तो मंगनी की बातें करेंगे, इसलिए वो नहीं आएंगे।
बाबा ने कुछ कहा है क्या?
नहीं, तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी माँ के अंदाज को पहचानता हूँ, जैसे सरमस ने तुम्हें देखा तो समझ गया होगा तुम्हारी और सामान की शादी की कोई बात है जो सरमस के सामने नहीं कहना चाहती हो।
काश सिर्फ यही बात होती। अब मैं और सीमा फूफी के इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मेरी जिंदगी पे असर पड़ रहा है।
अब कुछ हो गया है भाई? हाँ
अफशीन, अम्मी के मामूजात भाई याद है?
हाँ तो?
कुछ नहीं, उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया और इस वक्त ईरान में और फिर से शादी करना चाहता है। उसकी माँ ने भी अम्मी से बात की कि इस हफ्ते घर पे आ रही मुझे देखने।
ये मत कहना कि तुम्हारी अम्मी मान गई हैं। अरे बाप रे, ये तुम्हारी माँ भी कैसे मान गई कि अपनी इकलौती बेटी को दुनिया के दूसरे कोने में उसके साथ भेजें, कि जिसकी पढ़ाई के बारे में और जिसके कारोबार के बारे में कुछ भी नहीं पता।
अम्मी तो सीमा फूफी की लड़ाई की वजह से पीछे पड़ रही हैं, कह रही हैं अफशीन तुम्हारे लिए अच्छा लड़का है और मैं भी फॉरेन जाके बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकती हूँ।
तुम्हारे बाबा ने क्या कहा?
मुसीबत तो ये है कि उन्होंने उनको भी मना लिया, वो भी तैयार हो गए कि हाँ ठीक है उन्हें घर लाने दो।
ठीक है, मैं आज उनसे बात करता हूं, लेकिन इससे पहले एक सवाल का जवाब दो। بے تکلف اور بالکل سچ میرے سوال کا جواب دینا. یہ جو تم میرے پاس آئی ہو اس لیے ہے کہ افشین سے تمہیں چھٹکارا ملے یا کہیں نہ کہیں سامان کی محبت دل میں بس گئی ہے؟
دادا جان آپ تو مجھے ٹھیک سے جانتے ہیں، مجھے باہر جانے کا بالکل شوق نہیں ہے، میرا دل بھی نہیں مانتا. افشین کے بارے میں بھی یہی بات ہے، میں اسے نہیں جانتی اور نہ ہی اس کی زندگی کے طور طریقے سے مجھے کوئی دلچسپی ہے، بس یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. ہم لوگوں کی سوچ ہی نہیں ملتی ایک دوسرے سے دادا جان.
شاباش.
اور ساسان کے بارے میں، اچھا دادا جان میں چلتی ہوں، معاف کیجیے گا میں نے ڈسٹرب کیا.
لیکن میرے سوالوں کا جواب نہیں ملا. اصل بات بتاؤ، یہ تو ایک حصے کا جواب تھا، اب دوسرے حصے کا جواب دو.
اصل میں بچپن سے ساسان کے ساتھ پلی بڑھی ہوں، جب بھی اسے دیکھتی ہوں تو اس کے دل کی بات پڑھ لیتی ہوں. میں حق دیتی ہوں کہ امی اور بابا ساسان کو پسند نہ کریں، اس نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ رکھی ہے، کوئی کام بھی تو نہیں کرتا ہے. اصل میں یہ میری بھی پرابلم ہے، مجھے لگتا ہے اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتی میں. وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، لیکن
یہ لیکن ویکن سے لگتا ہے تھوڑا بہت پسند کرتی ہو، اس کا مطلب ہے شاید بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا
دادا جان؟ اب میں چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ معاف کیجیے گا. تھینک یو.
ٹھیک ہے جاؤ.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
آدھے گھنٹے.
اچھا
آدھے گھنٹے میں اپنی ہار نہیں بدل سکتے.
آپ دوشمبے سے لے کر آج تک 4-5 لاکھ تو مقروض ہو چکے ہیں، یاد ہے نا؟ ہاں. میرے خیال میں وہ دروازہ اس لیے بند ہے کہ جب کوئی اندر آئے تو اجازت لے کر آئے.
بابا ہے پوچھ رہے ہیں کس سے بات کیے جا رہے ہو، فون پہ فون کر رہے ہیں اور تم اپنا فون انگیج کیے ہو. لو بہت غصے میں ہیں.
وہ دروازہ بند کر کے جانا، آرش میں تمہیں فون کرتا ہوں. ہیلو.
ایک گھنٹے سے تم کس سے لگے ہوئے بات کر رہے ہو؟
میرا ایک دوست تھا، کیا ہوا؟ بات کرنا کم سے کم منع تو نہیں ہوا ہے نا؟
اگر عقل ہوتی تمہارے پاس تو اپنے سے بدتر دوستوں کے ساتھ گپے مارنے کے بجائے اپنے اطراف کی خبر رکھتے.
اب کیا ہو گیا جو
فوراً یہاں پہنچو، تمہارے نانا جان کو تم سے کام.
نانا جان کو مجھ سے کیا کام ہے؟
جب یہاں آؤ گے تب پتہ چل جائے گا تمہیں.
ارے بابا اس وقت مجھے کام ہے، سب کو تو رات میں کیا جانا ہی ہے نا.
آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ جاؤ گے سمجھے، اور پہلے میرے پاس تم آؤ گے.
میں اور مہتاب ضرور حاضر ہوں گے، لیکن محتاج کی طبیعت تھوڑا ناساز ہے، معاف کیجیے گا. نہیں بہانہ کیسا، کوئی بہانہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے. محتاج صرف اس بات سے پریشان ہے کہ خدا نخواستہ سیما کوئی ایسی بات نہ کہے جو ناراضگی کا باعث بنے، تو اس صورت میں سب کچھ بگڑ جائے گا، اور آپ تو دونوں کو پہچانتے ہیں، ان کے مزاج سے واقف ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جائے، پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. ضرور یقیناً. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے بات کر لوں گا، مطمئن رہیں، ضرور حاضر ہوں گا سر آنکھوں پر.
تو پھر اپنا کام کر ہی دیا
تو اب کیا کرتا؟ بابا بہت اصرار کر رہے تھے کہ ضرور آنا ہوگا، تو میں ان سے کیا کہتا؟
کچھ نہیں. تم کبھی اپنے باپ کے سامنے کچھ بول بھی سکتے ہو؟ تم 40 سال کے ہو چکے ہو، اب تک اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری شادی ہو چکی ہے.
جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس بیچارے کی بھی رضایت لینی.
مہتاج صاحبہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ایک مختصر سی افطاری ہے، ایک گھنٹے بیٹھ کر چلے آئیں گے، کیوں نہ پریشان ہوگی؟
لیکن اس ایک گھنٹے میں ایک سال کے برابر میں بہن جی کو جھیلتی رہوں گی، اس کی بکواس سنوں اور پھر ایک سر درد کے ساتھ واپس لوٹوں.
ارے تمہیں سیما سے کیا لینا دینا ہے؟
کسے اس سے لینا دینا ہے؟ وہ ہے جو صرف مجھے غصہ دلاتی رہتی ہے.
ایک منٹ ذرا چپ رہو گی، مجھے بھی کچھ بولنے دو گی؟
جی نہیں، آپ سنتے رہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. अगर वहां गए और सीमा ने मेहताब और उस लाऊबाली लड़के के बारे में कोई बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, उठकर चली जाऊंगी। हाँ, बाद में ये ना कहना कि वहां ऐसा क्या वैसा किया।
ठीक है, मैं सीमा से बात कर लूंगा।
अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है? गाड़ी मत ले जाइएगा, काम है। पेट्रोल नहीं है।
बेहतर हालत में नहीं आ सकते थे इसे तुम? अपने नाना को नहीं पहचानते तुम? ये कैसे बाल तुमने बना रखे हैं?
मैं अपने नाना हुजूर की खुशी के लिए अपने बाल नहीं कटवा सकता।
यही तो बात है ना, अगर तुम भी बाज लोगों की तरह उनके आसपास घूमते और दो तीन बार सलीके से नाना जान करते तो इस वक्त तुम्हारी हालत ये ना होती।
तो नाना जान को मुझसे काम नहीं था, आपने यहाँ मुझे बुलाया कि फिर से वही पुरानी बातें दोहराएं।
इत्तेफाक से इस दफा पुरानी बात बिल्कुल नहीं है। मुझसे पूछो कि एक घंटे पहले कौन यहाँ आया था?
एक घंटे पहले कौन यहाँ आया था?
आपकी लैला साहिबा।
मेहताब?
जी हाँ, मेहताब।
मेहताब यहाँ क्या कर रहे हैं?
यही तो, जब कहता हूँ काफिले से पीछे रह गए हो तो इसीलिए। इन दिनों नाना जान से सबको क्या काम हो सकता है, सब उनके गिर्द गिर्द घूमते हैं सिर्फ नए शॉपिंग सेंटर के लिए।
मेहताब? तो आपने अभी तक उसको पहचाना ही नहीं है?
इत्तेफाक से अच्छी तरह से पहचानता हूँ, उसको भी और उसके बाप को भी। ये तुम हो जो अपने आप में खोए हुए हो और कुछ भी नहीं जानते कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। मेहताब को इन दोनों यहाँ क्या काम हो सकता है? पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ अपने दादा जान से मिलने आई है, उनके चश्म अबरू की आशिक है? जी नहीं, अपने बाप की पढ़ाई हुई पट्टी यहाँ सुनाने आई है।
अरे बाबा, मुझे ये नहीं समझ में आता आप खुसरू मामू से इतना बदजन क्यों हो।
इत्तेफाक से मैं बिल्कुल बदजन इंसान नहीं हूँ, मैं उसे जानता हूँ, अपने मुकाबिल को पहचानता हूँ। ये जो शॉपिंग सेंटर तुम देख रहे हो, इन सब के लिए दौड़भाग मैंने की है, इसके सारे काम मैंने किए हैं। अब जब बात बन रही है तो दूसरों को उसे हड़प लेने दूं और उन्हें उनके आसपास घूमने दूं, उन्हें हजम कर ले जाने दूं।
तो फिर आप मुतमईन रहें कि वो मेहताब नहीं हो सकती। बाबा जान, उस शॉपिंग सेंटर के चक्कर में सारे का मत बिगाड़िए, हम तो वैसे ही अम्मी और मेहताब मानी के चक्कर में झेल रहे हैं, बस कीजिए।
इतनी खुशफहमी में न रहो बेवकूफ, मैं अगर परेशान हो रहा हूँ वो इसलिए कि इसका आधा हिस्सा तुम्हारा है। अगर ये शॉपिंग सेंटर भी तुम्हारे नाम हो जाए तो मेहताज मैडम भी लावाली होने की छड़ी तुम्हारे सर पर नहीं मारेंगी, खुसरो भी उसका पीछा छोड़ देगा तो फिर तुम्हें अपना दामाद जरूर बना लेगा। क्यों अपने बारे में कुछ नहीं सोचते? तुम अपना खुद ख्याल करो, अपने मफादात के बारे में सोचो।
चले, आप ही ठीक कहते हैं, अब क्या करना चाहिए?
हाँ, तो अब जब तुम्हारे नाना ने खुद ही तुम्हें बुलाया है तो उनसे सलीके से बात करना ताकि उनका दिल तुम जीत सको, ठीक है?
अच्छा,
ऐसा ही करना। अब जाओ, उठे अपने हाथ मुंह धो और ठीक होके जाओ, समझे? हाजी साहब जो भी कहें ना मत कहना, उनकी कोई बात मत ठुकराना, सिर्फ जी हुजूर जैसा आप कहें नाना जान, आप ठीक कहते हैं नाना जान, बिल्कुल ऐसा ही होगा जी, जरूर ऐसे तुम पर भरोसा करें, समझे? समझ जाए कि तुम्हें काबिलियत है सलीके से बात करना, बिल्कुल मेरी तरह, तुम मेरे बेटे हो। इसे बंद करो, इसे अपने मुंह से निकालो, बालों को जरा देखो, खड़े हुए हैं, सही करो इसको।
अस्सलाम वालेकुम सामान मियां, कैसे हो बेटा?
ठीक हूँ।
जाओ उधर बैठो।
आ जाओ वहां बैठो, उधर बैठ जाओ।
अच्छा, तो कहाँ रहते हो? कम नजर आते हो, कहीं काम वाम तो नहीं, बिजी तो नहीं, जो मुलाकात नहीं होती?
काम तो नहीं, कोई खास काम नहीं करता, ज़्यादा घर ही पर रहता हूँ।
अरे हाजी साहब, मैं आधी रात को जब जाता हूँ तो इसकी माँ कहती है अभी घर में लौटा है काम से, काम तो करता है।
ठीक है ठीक है, तो असल बात की तरफ चलते हैं कि क्यों तुम्हें बुलाया है, एक ज़रूरी बात है। तुम्हारे आने से पहले मेहताब यहाँ आई थी।
जी जानता हूँ। मेहताब साहिबा, खैरियत तो?
कुछ नहीं, वो मुझसे एक मसले के बारे में मशवरा लेने आई थी कि बात तुम्हारी और उसकी शादी की छिड़ गई। मैंने उसकी बातें सुन ली, अब तुमको बुलाया है कि तुम्हारा ख्याल भी इसके बारे में सुनूं।
असल में नाना जान, इरादा तो है और जैसा कि आप जानते हैं कई बार उनके यहाँ जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन अम्मी जान और मेहताज मामा के दरमियान इख्तलाफ की वजह से बात आगे ही नहीं बढ़ पाई।
देखो, मुझे महताज और तुम्हारी अम्मी के लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस खास मौजू के सिलसिले में महताज ठीक कहती है।
अरे नाना जान।
क्या नाना जान? महताज एक माँ है, एक ही लड़की है उसकी, तो उसके मुस्तकबिल के बारे में तो सोचेगी। वो तुमसे सिर्फ एक साल छोटी है, लेकिन कुछ ही दिनों में PhD कर लेगी। वो अपने पैरों पर खड़ी है, अच्छी मुलाजमत करती है, और तुम पढ़ाई तो छोड़ चुके हो, कामकाज भी नहीं करते, खुद अपने बकौल घर में पड़े रहते हो, तो कैसे उस लड़की को खुश रख सकते हो?
मुश्किल में पढ़ाई लिखाई नहीं है, बल्कि कुछ और है।
इत्तेफाक से महताब की मुश्किल बस यही है।
ये बात महताब ने कही है?
जी, खुद उसने कही है। ठीक कहती है। वो जानना चाहती है कि उसके शौहर क्या करते हैं, कैसे उसकी जिंदगी चलाएंगे, जबरदस्ती करके, घर में बैठकर या टहल घूमकर, कैसे?
मैं अगर घर पर रहता हूँ तो इसलिए कोई ढंग का काम नहीं मिलता।
देखो, मुझसे फालतू बातें मत करो, बकवास मत करो। मैं खुद 100 बार तुमसे कह चुका हूँ कि यहाँ मेरे और अपने बाप के साथ लग जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुमने कहा अच्छा काम नहीं, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं।
नाना जान, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कहीं कुर्सी पर बैठकर काम करने का आदी नहीं हूँ। कारीगरों से पूछताछ का भी हौसला नहीं है, और शायद मेहताब साहब को भी पसंद ना हो कि उनके शौहर उनके बाप को और दादाजान के अंडर काम करें।
हाजी साहब, मेरे बेटे को बात करने की तमीज़ नहीं, जिंदगी भर चूंकि काम करता रहा इसीलिए बात करने की तमीज़ नहीं। से मेहताब साहब जब कल को डॉक्टर बन जाएंगी तो ये सोचेंगी कि उनके शौहर को भी कोई ढंग का काम चाहिए। आज के नौजवानों को तो आप पहचानते ही ना, ये तो आपको पता ही है। पहले तो उनके बाल पर आप कोई एतराज़ न करें, और दूसरे ये कि उनकी तौहीन न करें। नौजवान है ना, इसीलिए तो इन्हें नौजवान कहा जाता है।
ठीक है ठीक है, तुम वादा करते हो कि अगर कोई ढंग का काम मिल जाए तो महताब ने जो शर्त रखी है उस पर अमल करोगे?
नाना जान, मैं जैसा भी हूँ, लेकिन चूंकि आप और महताब को चाहता हूँ तो कभी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन आप एक मोहब्बत करें कि उसके माँ बाप की इज्जत ले लें, वो जो भी शर्त रखेंगे मैं मानूंगा।
सच्चा वादा है ना?
बिल्कुल सच्चा।
हाजी, क्या मैं एक बात कहूँ? आप जब आप मोहब्बत कर ही रहे हैं कि ये दोनों किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो क्यों ना आप ये शॉपिंग सेंटर किसी एक के नाम कर दें, कि खुसरो और मेहताज साहिबा भी मुतमईन हो जाएंगे कि दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं, और सासान भी आज वालों की ज़बान में एक तरह से अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर पाएगा, और ज़मानत भी है, और उनकी ज़िंदगी क्या हाई फाई हो जाएगी।
ठीक है, पहले तो ये जनाब भी अपना वादा तो कम से कम निभाएं, तो देखा जाएगा क्या करना चाहिए फिर।
कभी तमीज नहीं सीखोगे, ऐसे बात की जाती है।
लेकिन मैं क्या कह दिया, ठीक तो कहा?
हाँ, बहुत ठीक कहा था। वो बातें जो नहीं कहनी चाहिए थी वो कह दी, और जो बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई। ये बताओ, जो शर्तें वो रखेंगे मैं मान लूंगा कि क्या मतलब? अगर कल को तुम्हारे नाना ने शॉपिंग सेंटर तुम्हारे नाम कर दिया, और शादी के वक्त तुम्हारे मामू जान ने कहा कि मेरी बेटी से शादी की शर्त यह है कि वो शॉपिंग सेंटर उनकी बेटी के नाम कर दो, तो क्या ये सारी शर्तें तुम मान लोगे, तस्लीम कर लोगे?
मैं नहीं जानता, आप मेरे बारे में परेशान हैं ये शॉपिंग सेंटर के?
जानना चाहते हो?
हाँ
जानना चाहते
जी।
हो? मैं इस बात से फिक्रमंद हूं, तुम कुछ नहीं बन पाओगे।
अस्सलाम वालेकुम सर। मस्त साहब, गुदर्स की बीवी आई है। मैंने कहा आज नहीं है। जरूर सर। हाजी, ये लेबल एक्सपोर्ट के लिए हैं, जिसे खुसरो साहब की तायद से हमने तैयार किया है। सेटिंग के बाद उनके पास भेजेंगे। दाखिल प्रोडक्शन के लिए भी ऐसे डिज़ाइन, ऐसे लेबल, ऐसे कलर की ज़रूरत पड़ेगी कि जो
ठीक है जी।
हशमत साहब आए, कह रहे हैं शायद तुमको अपने किसी अजीज के यहाँ जाना था।
कहो, इंतज़ार करें, थोड़ी देर में आता हूँ।
जी, मैं कह रहा था कि दाखिल प्रोडक्शन के लिए भी ऐसे कलर के डिज़ाइन,
ये सब मेरे ऑफिस में भिजवा दो, मैं वहाँ बेहतर तरीके से देखूँगा, फिर बताता हूँ।
बताएं मैं इन तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या करूं? गुदर्स आपके लिए काम करते थे, वो आपके लिए समा उठाते थे, इसी दरमियान की मौत हुई, और जब वो नहीं रह गए तो आप कहते हैं कि मैं भी इनकी तरह अपना सर जमीन पे रख जाऊं।
सुनिए नरगिस साहिबा, एक बात तो यह है कि गुदर्ज पार्ट टाइम हमारे लिए काम करता था, जब भी ट्रक भरता था उसका पैसा ले लेता था, हमारे यहाँ परमानेंट नहीं था। दूसरी बात यह है कि ट्रक का उलटना भी उसी की गलती थी कि वो सो गया था, और ये देखो कि इस हादसे में हमारा सारा सामान बर्बाद हो गया। और तीसरी बात यह है कि मैंने उसी वक्त हाजी से बात की थी, उन्होंने मुख्तसर पैसे तुम्हें खुदा की रजा के खातिर दिए थे जो मैंने आपकी खिदमत पेश कर दिए। आपने भी रजायत नामे पर दस्तखत कर दिए थे कि गुदर साहब के सारे हिसाब किताब पूरे हो गए हैं।
खुदा के वास्ते मुझे हक दें, मैं 1,00,000 तुमसे क्या कर सकती थी।
तो हमने भी कोई कर्ज तो अदा नहीं किया था ना, सिर्फ खुदा की खुशी के लिए किया था। सुनिए मेरी बहन, हम तो इनके उनके गुनाहों का बदला देने वाले नहीं है ना।
मैं यहाँ आपसे सदका लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कहने आई थी कि गुदर्स की जान आपके काम की वजह से गई है, तो कम से कम इनके मरने के बाद थोड़ी बहुत मदद हमारी भी कीजिए।
मैंने तो आपसे कहा तो इंशाल्लाह जब शॉपिंग सेंटर खुल जाएगा तो वही मेरे पास आना, कहीं काम दिलवा दूंगा।
6 महीने पहले भी यही बात की थी लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।
बनिए की दुकान थोड़ी है कि 2 दिन में खुल जाए, एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है तेहरान के बेहतरीन इलाके में, और वो भी बहुत सारी सिफारिश करने पड़ेगी कि तुम्हें वहाँ काम मिल सके। मैंने वादा किया है तो अपने वादे पर कायम हूँ, मेरा वादा वादा है। अच्छा उठकर हाजी के पास मत चले जाना, एक बार मदद कर चुके हैं, दूसरी बार अगर यही बात की तो वो नाराज भी हो सकते हैं, फिर मेरी भी नहीं चलेगी। तुमने 6 महीना इंतजार किया है, 2 हफ्ता और सही, मुश्किल क्या है, 2 हफ्ते और सही। मैं काम दिलाऊंगा, मैं खुद ही फोन करूंगा। ठीक है अब जाओ, जाओ अब जाओ ना, मुझे क्या देख रही हो।
हाँ तो पता चला खराबी क्या थी?
कोई खास खराबी नहीं थी, अजीब है, जैसे ही मैकेनिक उसे देखने आया एक ही बार में स्टार्ट हो गई, लेकिन मैंने एहतियात की खातिर एक बार और सर्विसिंग करवा दी ताकि कोई खराबी ना रह जाए। इस वक्त ठीक है,
यानी 50-60 हज़ार जो मैंने इसके गले में अटका था है ना।
हाजी अगर मैं एक बात कहूँ तो मुझसे नाराज मत होइएगा, ये गाड़ी अपनी जिंदगी जी चुकी, अब कुछ पैसे खर्च करके एक कायदे की और साफ सुथरी गाड़ी खरीद
भी हो गए सर मस्त। सुनो अगर मैंने गाड़ी बदली तो इसका ड्राइवर भी इसके साथ बदल दूंगा हशमत साहब।
मेरे साथ भी, मेरा फर्ज कहना था, अब आपकी मर्जी जो चाहे करे, मैं तो सिर्फ एक खादिम हूँ। पहुंच गए हाजी।
गाड़ी ठीक से पार करो, मैं अभी आता हूं।
जरूर हाजी।
अलैकुम हाजी।
वालेकुम सलाम राजी साहिबा, आपकी तबीयत कैसी है?
अल्हम्दुलिल्लाह। आफाक साहिबा नहीं आई हैं?
मैं दावत पर नहीं आया था, ये हमारे खासुल खास दोस्त कहाँ हैं?
आइए अंदर आइए।
या अल्लाह
खुश आमदीद। सादिक ये देखो कौन मिलने आया है।
السلام علیکم.
مجھے کیسے یاد کر لیا آج ہی؟
کچھ مت بولو کہ جتنا بولو گے اتنی شرمندگی ہوگی.
تمہارا دشمن شرمندہ ہو. تمہیں پتا ہے کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی
تمہاری محبت ہے.
اچھا تو بتاؤ کیسے ہم غریبوں کو یاد کیا؟
پہلے تو اس لیے کہ تم لوگوں کو آج رات میرے یہاں افطار کرنا ہے. بچے آئیں گے لیکن آفاق کو تمہارے آنے کے بارے میں پتہ نہیں. اسے سرپرائز دینا ہے.
مجھے تو معافی رکھو, آج میرے گھر خود ہی مہمان آ رہے ہیں.
آنے دو, ان کو بھی لے آنا, وہ بھی سر آنکھوں پر.
نہیں آجی, کوئی قریبی نہیں ہے. شاید قبول بھی کر لے لیکن ہو سکتا ہے شرما.
کون ہے؟
جنگ کے زمانے کا ساتھی ہے. ہر سال ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو میرے یہاں آتا ہے.
بہانہ بنا رہے ہو نا؟
بہانہ کیسا حاجی, انشاءاللہ پھر کبھی. چلو پہلی بات تو بتائی اور دوسری بات کیا ہے؟
دوسری بات پہلی سے زیادہ اہم ہے لیکن وعدہ کرنا پڑے گا کہ کسی سے نہیں کہو گے.
اچھا تو کہو نا, پھر کوئی شرط و شروط ہے؟
اصل میں یہ بات, میرے مرنے کے بعد تمہیں جاننا ضروری ہے.
اچھا ٹھیک ہے, ابھی جاؤ, مرنے کے بعد آ کر بتانا.
مسئلہ بہت اہم ہے, آفاق کو بھی نہیں بتایا ہے.
کیا بات ہے حاجی, آج کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو.
کل رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے.
اچھا خیر ہو انشاءاللہ.
اس خواب کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں.
اچھا تو کیا خواب دیکھا؟
اصل میں کیا ہوا
صادق؟ آکسیجن.
معاف کرنا. ہاں تو بولو. شکریہ, آپ جا سکتی ہیں.
آفاق ہیں
تو اٹھا لو نا.
حاجی صاحب کچھ پتہ ہے کہاں ہیں آپ؟ سب آ گئے ہیں بس آپ نہیں ہیں.
بس آ گیا, آپ کے بھائی کے یہاں آیا تھا انہیں افطار پر دعوت دینے.
تو پھر آتے کیوں نہیں, افطار کا وقت ہو رہا ہے.
غالباً ان کے یہاں کوئی اور مدعو ہے.
تو انہیں بھی ساتھ لے آئے.
میں نے بھی کہا کہ ان کو بھی ساتھ میں لے چلیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا.
جیسی ان کی مرضی, ان کو اور بھابھی کو سلام کہہ دیں.
وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں.
آپ خود کب پہنچ رہے ہیں؟
میں تو بس نکل ہی رہا ہوں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟
جلیبیاں لانا نہ بھولیے گا, یاد ہے نا؟
نہیں خرید لی ہیں, گاڑی میں ہے.
خدا حافظ.
واہ 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 بھائی, اپنی بہو پر قربان جاؤں, بہت بہت شکریہ, کیا پسند ہے. آؤ چلو نہیں 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 بیٹا, چادر پہن کر مشکل ہے, جاؤ بیٹھ جاؤ, دسترخوان لگائے جاؤ.
بہرحال خوش آمدید, صادق بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
علیکم السلام,
بہت بہت
شکریہ, خوش آمدید, خوش آمدید.
لگتا ہے میں غلط وقت پہ آ گیا.
نہیں بھائی کوئی غیر نہیں ہے, اپنے ہی.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
حاجی فتح سلطانی, میرے بہنوئی ڈاکٹر سہراب نگزاد, جن کا تذکرہ کر رہا تھا.
بہت خوشی ہوئی.
مجھے بھی
آپ کا ذکر خیر بہت سنا, آپ کی زیارت کی خواہش تھی. ہماری کہیں ملاقات تو نہیں ہوئی؟
اتفاق سے آپ کا چہرہ بھی کافی جانا پہچانا لگ رہا ہے. معاف کیجیے گا, ڈسٹرب تو نہیں؟
نہیں بھائی, کیسی بات کر رہے ہیں, میں ذرا اپنے پرانے دوست سے ملنے آیا تھا کہ اب جا ہی رہا تھا.
اب اتنی جلدی بھی کیا؟
اب تو
جناب اگر میں ڈسٹرب کر رہا ہوں تو
آپ تشریف رکھیں. मेरा बुलावा आ चुका है, बीवी की बात सुनना जरूरी है, खास तौर पर जब उनके भाई भी मुझे घूर रहे हों।
जी
मैं कल आपके पास आऊंगा उस मौजू के सिलसिले में बात करने, लेकिन वेकिन नहीं, कोई बहाना कबूल नहीं किया जाएगा। हैं
सर, आंखों पर हाफिज,
अपना ख्याल रखना,
और बच्चों को सलामत रहो।
खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज, खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज, खुदा हाफिज सबको,
खुदा हाफिज।
राजी साहिबा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज।
हाजी अभी अफ्तार करके जाइए।
मेरी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई?
नहीं भाई, उनके बच्चे घर पर अफ्तार पर मौजूद थे, जाना ही था।
और आपकी तबीयत कैसी है वैसे, सांस लेने में कोई मुश्किल तो नहीं?
नहीं खुदा का शुक्र है, ठीक हूँ। तुम कैसे हो?
बहुत अच्छे।
और तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है?
कोई खास तब्दीली नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक नहीं है, इंतजार कर रही है कि कब ऑपरेशन होता है।
खुदा महफूज रखे। और मेहंदी, कोई खबर मिली?
कुछ नहीं, कुछ नहीं। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले उसके बारे में पूछने गया था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, कुछ भी नहीं।